आज 70वीं कारिका से पढ़ेंगे। शब्द को नित्य और अनित्य दोनों माना गया है दर्शन में। मीमांसा दर्शन वाले शब्द को नित्य मानते हैं और न्याय दर्शन वाले शब्द को अनित्य मानते हैं। न्याय के मत में जो शब्द है वह ध्वनि ही शब्द है, ध्वन्यात्मक शब्द है, वो ध्वनि को शब्द मानते हैं। और मीमांसा दर्शन वाले जो हैं ये वर्ण को शब्द मानते हैं। और हम लोग जो हैं व्याकरण जो हैं ये शब्द को नित्य मानते हैं, लेकिन न ध्वनि को मानते हैं शब्द, न वर्ण को मानते हैं शब्द, बल्कि अखंड स्फोट को जो है हम लोग शब्द मानते हैं। और वह जो अखंड स्फोट है शब्द, वह नित्य होता है। तो इन्हीं सब बातों को अब हम अगली कारिका में पढ़ने वाले हैं। कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् एकत्ववादिनः, केचित् विद्वांसः, कुछ विद्वान जो हैं वो एकत्ववादिनः, वो एकत्ववादी हैं। एकत्ववादी हैं मतलब शब्द को एक मानते हैं। कार्यत्वे नित्यतायां वा, माने शब्द नित्य हो तो भी शब्द को एक मानते हैं, और शब्द कार्य हो तो भी शब्द को एक मानते हैं। कार्य का मतलब होता है अनित्य, तो कार्यत्वे माने अनित्यत्वे, नित्यतायां वा माने शब्द अनित्य हो, शब्द का अनित्य पक्ष हो अथवा शब्द का नित्य पक्ष हो, दोनों ही पक्षों में केचित एकत्ववादिना, कुछ विद्वान जो हैं वे एकत्ववादी हैं, अर्थात शब्द को एक ही मानते हैं। फिर आगे कहते हैं कि कार्यत्वे नित्यतायां वा केचिन नानात्ववादिनः, और केचित माने कुछ जो विद्वान हैं वो नानात्ववादी हैं, कुछ तो एकत्ववादी हैं और कुछ नानात्ववादी। एकत्ववादी का मतलब हुआ कि शब्द एक है, ऐसा जो मानते हैं उनको एकत्ववादी कहते हैं, और शब्द नाना, ऐसा जो मानते हैं उनको नानात्ववादी कहते हैं। तो नानात्ववादी के मत में बता रहे हैं कि कार्यत्वे नित्यतायां वा, कि शब्द जो है वह कार्य हो अथवा नित्य हो, दोनों ही पक्ष में दोनों ही स्थिति में शब्द जो है वह नाना प्रकार का होता है। इस तरह से शास्त्र में दो प्रकार के मत चलते हैं, एकत्ववादी का मत और नानात्ववादी का मत। इस 70वीं कारिका में केवल जो है ना इतना ही बताया, इसका विश्लेषण आगे की कारिकाओं में बताएंगे। अब चलते हैं 71वीं कारिका में। पदे भेदेपि वर्णानाम एकत्वम न निवर्तते, वाक्येषु पदम एकंच भिन्नेषु अपि उपलभ्यते। पदे वर्णानाम भेदे अपि एकत्वम न निवर्तते, ताकि पद में जैसे घटपट आदि जो पद है उसमें वर्णानाम भेदे अपि, वर्णों के भेद रहने पर भी, अलग अलग वर्ण होने पर भी एकत्वम न निवर्तते, पद का एकत्व जो है वह निवृत्त नहीं होता है, पद का एकत्व खत्म नहीं होता है। अब जैसे आपको कोई पूछे कि राम हाँ यह एक पद है कि दो पद है, तो आप कहेंगे ना कि राम एक पद है। क्यों कहेंगे? अब इसमें तो वर्ण अलग अलग हैं, र है, आ है, मो है, मो का अ है, तो वर्ण तो भिन्न भिन्न है। फिर भी भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी आप व्यवहार में कहते हैं ना कि रामः इति एकम पदम। तो यही यहाँ पर तर्क में बताया जा रहा है कि पदे वर्णानाम भेदे अपि, पद में वर्णों के परस्पर भेद होने पर भी एकत्वम न निवर्तते, पद के एकत्व की निवृत्ति नहीं होती है। इसी तरह से भिन्नेषु वाक्येषु अपि एकम पदम च उपलभ्यते, ऐसे ही भिन्न भिन्न वाक्य होने पर भी एक पद जो है वह उपलब्ध होता है। अब जैसे घटम आनय, घटम पश्य, घटम आभर, ये जितने भी वाक्य हैं उसमें घट पद जो है वह एक ही घट पद का प्रयोग हुआ है, ऐसा कहते हैं ना, जब वाक्य भिन्न भिन्न है। जैसे वर्ण भिन्न भिन्न होने पर भी एक पद कहा जाता है, उसी तरह से वाक्य के भिन्न होने पर भी एक पद कहा जाता है, एक पद माना जाता है। ये मत है किनका? एकत्ववादियों का। कि वर्ण भेद होने पर भी, वाक्य भेद होने पर भी पद का एकत्व जो है वह कायम ही रहता है, पद का एकत्व नष्ट नहीं होता है। इस तरह से एकत्ववादी का मत यहाँ पर बताया गया। आगे फिर कहते हैं कि तद वर्ण व्यतिरेके न पद मन्यन न विद्यते, वाक्यम वर्ण पदाभ्यां च व्यतिरिक्तम न किंचन। ताकि वर्ण व्यतिरेके न, वर्ण व्यतिरेक में जो व्यतिरेक शब्द है इसका अर्थ कर लीजिए भेदे न, कि वर्ण भेदे न, वर्ण व्यतिरेक व्यतिरेके न माने वर्ण भेदे न, तत्पदम वर्ण व्यतिरेके न अन्यत न विद्यते। जो बात पहले की कारिका में है उसी बात को यहाँ पर दूसरे ढंग से खाली कह रहे हैं। बात वही है कि तत्पदम वह जो पद है वह वर्ण व्यतिरेके न माने वर्ण भेद, वर्ण के भेद हो जाने से न अन्यत विद्यते, अन्यन न विद्यते, पदम अन्यन न विद्यते, वह पद जो है वह अन्य नहीं होता है, माने पद भिन्न नहीं होता है, पद एक ही रहता है। वाक्यम च वर्ण पदाभ्याम व्यतिरिक्तम किंचन न, इसी तरह से वाक्य भी जो है उसमें वर्ण और पद रहता, वाक्य में और क्या होता है, कुछ नहीं होता, या तो वर्ण होते हैं पद होते हैं, यही होता है ना वाक्य में। तो वाक्यम च वर्ण पदाभ्याम व्यतिरिक्तम, वर्ण और पद के अतिरिक्त उससे अलग कुछ भी नहीं होता वाक्य में। तो इस तरह से पद हो तो पद भी एक है, और वाक्य अगर अलग अलग हो तो भी पद एक है, क्योंकि पद ही सर्वत्र रहता है, वाक्य में भी पद रहता है और पद में तो पद रहता ही है, और वर्ण जो है वह पद में भी रहता है और वर्ण जो है वह वाक्य में भी रहता है। तो कुछ भी हो, वर्ण का भेद होने के बावजूद भी, वाक्य के का भेद होने के बावजूद भी पद जो है वह पद ही रहता है, उससे अलग जो है ना कुछ नहीं होता, वाक्य भी पद से अलग कुछ नहीं होता, ऐसा जो मानना है यह एकत्ववादी का मानना है। अब 73वीं कारिका में ये वैयाकरणों का जो पक्ष है उस पक्ष को बताते हैं कि पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अव्यवान च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। ये वैयाकरणों का पक्ष है। वैयाकरण का मत मैंने बताया था ना कि अखंड वाक्य स्फोट जो है वही हमारे यहाँ शब्द है, और वह शब्द जो है वह नित्य होता है। हम लोग वर्ण की सत्ता नहीं मानते, हम लोग पद की सत्ता नहीं मानते, मानते हैं मतलब पारमार्थिक रूप से उसकी सत्ता नहीं होती है। व्यवहार चलाने के लिए तो कहते हैं कि घट में भकार वर्ण है, अकार वर्ण है, टकार वर्ण है, व्यवहार के दशा में तो हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वस्तुतः पारमार्थिक दृष्टि से जो है न वर्ण का अस्तित्व नहीं होता, पद का अस्तित्व नहीं होता, असली अस्तित्व क्या होता है, वाक्य का होता है। किस वाक्य का, अखंड वाक्य का होता है, वह जो अखंड वाक्य है वही स्फोट है। तो उसी के लिए कहते हैं कि पदे न वर्णा विद्यन्ते, वस्तुतः पद में वर्णा न विद्यन्ते, पद में वर्ण नहीं होते हैं, वर्णों की सत्ता नहीं होती है। वर्णेषु अव्यवा न च, और वर्णों में वर्ण का अवयव नहीं होता, जैसे वर्ण में वर्ण का अवयव नहीं होता, जैसे ककार वर्ण है तो ककार में कोई अवयव होगा, कोई टुकड़ा होगा, नहीं होगा। तो ऐसे जैसे वर्ण में कोई टुकड़ा नहीं होता, ऐसे ही पद में भी कोई टुकड़ा नहीं होता, यही कहना है। पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेषु अव्यवान च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। और कहा कि वाक्य भी जो होता है ना, वह वाक्य न पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न, प्रविवेक माने भेद, पद के अतिरिक्त वाक्य में और कुछ भी नहीं होता, माने वर्ण में अवयव नहीं होता, पद में वर्ण नहीं होता, और वाक्य में जो है वह पद ही होता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। यही यहाँ पर व्याकरणों का पक्ष जो है 73वीं कारिका में प्रकट किया गया। अब आगे 74वीं कारिका में फिर कहते हैं कि भिन्नम दर्शन आश्रित्य व्यवहारोनुगम्यते तत्र यन मुख्यम एकेषां तत्रैतेषां विपर्ययः। ताकि व्यवहार चलाने के लिए व्याकरण लोग वर्ण का भी व्यवहार करते हैं, पद का भी व्यवहार करते हैं, लेकिन वस्तुतः जो है अखंड वाक्य स्फोट ही शब्द है, वही नित्य है, वही ब्रह्म स्वरूप है। तो वही कहा कि भिन्नम दर्शनम आश्रित्य, भिन्न भिन्न दर्शन का आश्रय के लेकर के व्यवहार अनुगम्यते, व्यवहार का अनुगम किया जाता है, व्यवहार का को चलाया जाता है। तत्र यन मुख्यम एकेषाम, और उन दर्शनों में जो मुख्य मत है, क्या मुख्य मत है कि मुख्य मत में है कि ये पद जो है और वर्ण जो है वह शब्द है, ये जो उन लोगों का मुख्य मत है उसमें तत्र एतेषाम विपर्यय, एतेषाम वैयाकरणानाम विपर्यय, वहाँ पर जो है ना वैयाकरणों का मतभेद है। वैयाकरण वाक्य की सत्ता मानते हैं, पद और वर्ण की सत्ता नहीं मानते, जबकि दर्शनांतर में वर्ण और पद की ही सत्ता मानी जाती है, वाक्य की सत्ता नहीं मानी जाती है। तत्र यन मुख्यम एकेषाम, एकेषाम मतलब अब दूसरे आचार्यों का, दूसरे दर्शनों का जो मुख्य मत है कि वर्ण शब्द है और पद शब्द है, तत्र एतेषाम विपर्यय, उसमें वैयाकरणों का जो है ना विपर्यय है, माने मतभेद है, विपरीत मत है। इस तरह से इस कारिका को भी पढ़ लिया हमने। अब 75वीं कारिका को पढ़ते हैं कि स्फोटस्य अभिन्न कालस्य घन कालानुपातिन ग्रहणोपाधि भेदेन वृत्ति भेदम प्रचक्षते। अब ये प्रसंग खत्म हो गया, शब्द नित्य अनित्य वाला, एकत्व वाला अनेकत्व वाला। अब जो है ना स्फोट और ध्वनि, इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, एक से दूसरे का कैसे उपकार होता है, उस बारे में अब यहाँ से आपको बहुत ही विस्तार में चर्चा करते हुए बताया जाएगा। तो 75वीं कारिका में है कि स्फोटस्य अभिन्न कालस्य ध्वनि कालानुपातिनः ग्रहणोपाधि भेदेन वृत्ति भेदम प्रचक्षते। आप जानते हैं कि व्यक्ति वक्ता जो बोलता है वह ध्वनि को बोलता है, और श्रोता जो सुनता है वह ध्वनि को सुनता है, और वही ध्वनि जो है श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जब हृदय देश में पहुंचती है तो वहाँ पर जो स्फोट है उस स्फोट को व्यंजित कर देती है वह ध्वनि। तो ये काल का जो भेद है, काल का अर्थ यहाँ पर समय नहीं लेना है, काल का अर्थ लेना है मात्रा। तो ये एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा, ये सब जो होती है ना, तो ह्रस्व में एक मात्रा होती है, दीर्घ में दो मात्रा होती है, प्लुत में तीन मात्रा होती है, यही है यहाँ पर काल। तो मात्रा के भेद से जो भेद होता है वह किस में भेद होता है, वह ध्वनि में भेद होता है, वह स्फोट में भेद नहीं होता है। वही कह रहे हैं कि स्फोटस्य अभिन्न काल से, स्फोट जो होता है वह अभिन्न काल होता है, माने काल के आधार पर उसमें भेद नहीं होता, मात्रा के आधार पर उसमें भिन्नता नहीं होती। ध्वनि काल अनुपातिना, और यह जो स्फोट है वह ध्वनि काल का अनुपाती होता है, अनुपाती होना मतलब अनुगमन करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। तो ध्वनि में जो काल होता है, ध्वनि में जो मात्रा होती है, वह ही मात्रा, ध्वनि वाली मात्रा जो है स्फोट में प्रतीत होती है, वस्तुतः स्फोट में कोई मात्रा वात्रा नहीं होती है। ग्रहणोपाधि भेदेन वृत्ति भेदम प्रचक्षते, यहाँ जो ग्रहण उपाधि के भेद से वृत्ति भेद कहा जाता है, ये इन्होंने यहाँ पर कहा। यहाँ ग्रहणोपाधि भेदेन का अर्थ क्या करना है, तो ग्रहण उपाधि किसको कहते हैं, तो व्यंजक उपाधि को, जो अभिव्यक्त करने वाली उपाधि है उसको हम कहेंगे, या प्रकाशित करने वाली उपाधि है उसको कहेंगे ग्रहणोपाधि। ग्रहण का अर्थ हो गया यहाँ पर प्रकाशन अथवा अभिव्यंजन। तो प्रकाशन करने की जो उपाधि, उपाधि का अर्थ यहाँ पर आप कारण कर कह सकते हैं, तो ग्रहणोपाधि दोनों का एक अर्थ करना चाहें तो प्रकाशक कह सकते हैं, व्यंजक कह सकते हैं, या व्यंजक कह लीजिए सबसे अच्छा है। तो ग्रहणोपाधि भेदे न माने व्यंजक भेदे, हाँ व्यंजक के भेद से। व्यंजक किसको कहते हैं, जो किसी को अभिव्यक्त करे, जो किसी को प्रकाशित करे, उसको हम व्यंजक कहते हैं। तो मैंने पहले बताया हुआ है कि ध्वनि जो है वह व्यंजक है, और स्फोट जो है वह व्यंग्य है। ध्वनि है प्रकाशक और स्फोट है प्रकाश्य। ध्वनि है अभिव्यंजक और स्फोट है अभिव्यंग्य। तो इस तरह से ग्रहणोपाधि भेद है ना, ग्रहणोपाधि जो है माने व्यंजक जो है ध्वनि, उसके भेद उसका वह भेद है कौन, ये मात्रा आदि भेद जो है ना वो उसी का भेद है। और वृत्ति भेदम प्रचक्षित, और वृत्ति भेद भी जो है वह वृत्ति भेद भी ध्वनि का वृत्ति भेद होता है, वृत्ति भेद स्फोट का भेद नहीं होता है। अब आपके मन में आगा ये वृत्ति भेद क्या है तो आगे शायद बताएंगे, लेकिन मैं अभी बता दूं आपको कि तीन तरह की वृत्ति यहाँ इस संदर्भ में आपको माननी पड़ेगी। एक द्रुत वृत्ति, एक विलंबित वृत्ति और एक मध्यावृत्ति। तीन तरह की वृत्ति होती है। जल्दी जल्दी जब बोलते हैं तो वहाँ पर द्रुत वृत्ति मानी जाती है, और मध्यम गति में बोलेंगे तो वो मध्यावृत्ति हो जाएगी, और बहुत रुक रुक करके बोलेंगे तो वहाँ विलंबिता वृत्ति होगी। तो ये जो वृत्ति भेद है, तीन प्रकार के जो भेद हैं, द्रुत मध्य और विलंबित, ये जो तीनों भेद हैं ये भी व्यंजक का भेद है माने ध्वनि का भेद है या स्फोट का भेद नहीं है। अब 76वीं कारिका को जो है ना पढ़ लेते हैं कि स्वभाव भेदान नित्यत्वे ह्रस्व दीर्घ प्रुतादिषु प्राकृतस्य ध्वने कालः शब्दस्य उपचर्यते। काकि स्वाभाविक भेद जो है वह किसका है, ध्वनि का। क्या क्या, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये जो है यही है काल भेद, मात्रा भेद जिसको कहते थे। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि का जो भेद है यह स्वाभाविक रूप से भेद है, किसका, ध्वनि का भेद है। स्फोट तो नित्यत्व, स्फोट तो नित्य है, लेकिन उसमें उसका जो ध्वनि का जो स्वभाव है, स्वाभाविक भेद है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वह नित्य स्फोट में भी भाषित होता है। प्राकृतस्य ध्वने काल शब्दस्य इत्युपचर्यते, और प्राकृत ध्वनि का जो काल है, प्राकृत ध्वनि की जो मात्रा है वही शब्दस्य माने स्फोटस्य, वही स्फोट में उपचरित होता है। स्फोट में उपचरित होता है माने स्फोट में आरोपित होता है, प्रतीत होता है। वस्तुतः ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि जो भेद है ये प्राकृत ध्वनि का भेद है, यह स्फोट का भेद नहीं है, स्फोट में वह आरोपित होता है। यहाँ पर एक शब्द नया आया प्राकृत ध्वनि, इसके बारे में हम अगली कारिकाओं में पढ़ेंगे कि ध्वनि दो प्रकार की होती है, प्राकृत ध्वनि और विकृत ध्वनि। तो आज का पाठ हम यहीं स्थगित करते हैं।